उर्वशी में प्रेमाभिव्यंजना। मानव मन विविध भावों का कोश है, प्रेम का भाव इनमें प्रमुख है। प्रेम प्रिय शब्द का भाववाचक रूप है। प्रिय शब्द का अर्थ है तृप्तिकारक, प्रीणातीत प्रिय। अतः प्रेम शब्द के हृदय में के तृप्त रूप आनंद का बोध होता है। व्याकरण के अनुसार भी शब्द की व्युत्पत्ति इसी अर्थ की द्योतिका है। प्रिंज प्रीतो धातु से उणादि सूत्र सर्वधातुभ्य से मिनन प्रत्यय लगाकर प्रेम शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है प्रीत देने वाला, अनंत तृप्ति प्रदान करने वाला। यही कारण है कि आदिकाल से ही मानव इस भाव के अभिव्यक्ति करता आया है। प्रेमाभिव्यक्ति की परंपरा। संस्कृत साहित्य में प्रेम की सर्वप्रथम अभिव्यक्ति पुरुर्वा उर्वशी प्रेमाख्यान के रूप में ऋग्वेद में मिलती है। अथर्ववेद में भी प्रेम विषयक उल्लेख मिलता है, किंतु प्रेम का व्यापक चित्रण आदिकवि वाल्मीकि के काव्य में प्राप्त होता है। आदि कवि के पश्चात कवि कुलगुरु कालिदास के काव्य में सही प्रकार के प्रेम विषयक भावनाओं के आंतरिक बाह्य दोनों प्रकार के सौंदर्य के मानविक वर्णन उपलब्ध होते हैं। कालिदास के प्रेम दृष्टिपूर्ण सांस्कृतिक और आध्यात्मिक है। भावभूति का प्रेम चित्रण भी सहृदय संवेद्य उद्दात्त और उत्कृष्ट है। अश्वघोष का प्रेम चित्रण भी कालिदास और भावभूति के प्रेम चित्रण के प्रेम की भांति उद्दात्त परिष्कृत और संयत है। संस्कृत साहित्य की यह परंपरा जब जयदेव के हाथों में आई तो यह एकदम बदल गई। जयदेव के प्रेम वर्णन में के यदि आध्यात्मिकता का घीना आवरण हटा दिया जाए तो यह एकदम लौकिक और अश्लील बन जाता है। इस प्रकार संस्कृत साहित्य में प्रेमाभिव्यक्ति की परंपरा के दो रूप स्पष्टतः परिलक्षित होते हैं। पहला रूप है प्रेम का उद्दात्त रूप, जो आदि कवि से प्रारंभ होकर अश्वघोष तक मिलता है। दूसरा प्रेम का आध्यात्मिक या लौकिक रूप, जो जयदेव से प्रारंभ होता है। संस्कृत साहित्य की प्रेमाभिव्यक्ति के इन दोनों रूपों का प्रभाव हिंदी साहित्य में दृष्टिगोचर होता है। वीरगाथा काल के काव्यों में प्रेम का लौकिक रूप वीरता के आवरण में निहित है। भक्ति काल के प्रेम पर आध्यात्मिकता का गहरा आवरण पड़ा हुआ है। रीति काल का प्रेम शुद्ध रूप से लौकिक है। आधुनिक काल में प्रेम की लौकिकता व प्रतीक अध्यात्म और दात्य के गहरे रंग लगे हुए हैं। प्रेम का स्वरूप। प्रेम की परिभाषा और उसके स्वरूप का विवेचन भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न शब्दावलियों में किया है। नारद भक्ति सूत्र में प्रेम को अनुभव गम्य माना गया है और बताया गया है कि प्रेम वाणी का विषय नहीं है, यह तो मुखा स्वादनवत अनिर्वचनीय है। यह पहले तो विषय जन्य होता है, गुणों के कारण उत्पन्न होता है, किंतु बाद में भावात्मक का विषय निरपेक्ष बन जाता है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मुखा स्वादनवत प्रकाशते क्वापि पात्रे गुणरहितम प्रतिक्षण वर्धमानम विच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूप स्वरूपम। रूप गोस्वामी ने प्रेम को एक ऐसा सांद्र भाव माना है जो हृदय को स्निग्ध करे तथा ममत्व के अतिशय से युक्त हो। सम्यंग मसृण तस्वान्तो ममत्वातिशयांकित भाव स एव सांद्रात्या बुद्धय प्रेमो निगद्यते। पाश्चात्य विद्वानों ने भी प्रेम की भिन्न भिन्न परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं। प्लेटो के अनुसार प्रेमानुभव से रहित व्यक्ति सदा अंधकार में भटकता रहता है। नीत्शे का मत है कि प्रेम से ही हमारे अंतरचक्षु खुलते हैं। हेगेल की मान्यता है कि प्रेम के द्वारा ही अभेद की स्थिति प्राप्त होती है। हैवलॉक वासना और प्रेम में अंतर मानते हुए कहते हैं कि तुच्छ वासना के रहते हुए प्रेम का कमल नहीं खिल सकता। विलेडिमार साल्लेवेन के अनुसार प्रेम का अर्थ है अहंकार के त्याग द्वारा अपनी मुक्ति। इन परिभाषाओं से अनायास यह निष्कर्ष निकल आता है कि प्रेम वासना का नाम नहीं है और न स्वयं को आबद्ध करने का ही बंधन है, परंतु प्रेम हृदय की वह परिष्कृत उद्दात्त अनिर्वचनीय भावना है जो मन की शुद्धि करती है और व्यक्ति को अहम के बंधन से जुड़ाकर उसे सार्वजनीन बना देती है। यही भाव दिनकर के इन शब्दों में भी है। इंद्रियों के मार्ग से अतिंद्रिय धरातल का स्पर्श, यही प्रेम की आध्यात्मिक महिमा है। प्रेम के गुण। प्रेम से प्रेमी का चित्त का संस्कार होता है, अतः इस दृष्टि से इसके 8 भेद माने गए हैं। उल्लास, ममता, विस्रम्भ, प्रिय के गुण का अभिमान, चित्त का द्रवी भाव, अतिशय अभिलाषा, प्रिय के विषय में प्रतिक्षण नवनवत्व की अनुभूति और प्रिय संबंधी किसी विलक्षण गुण के कारण उन्माद। पहला, उल्लास। इसके उत्पन्न होने में केवल प्रिय के प्रति ही प्रेम रह जाता है, प्रियतर अन्य प्राणियों अथवा वस्तुओं के प्रति तुच्छ बुद्धि हो जाती है। दूसरा, ममता। इसके उत्पन्न होने पर प्रेम के बाधक तत्वों का प्रेमी के हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात वह बंधनों की चिंता छोड़ देता है। तीसरा, विश्रम्भ। विश्रम्भ अथवा विश्रम्भ का अर्थ विश्वास। इसके उत्पन्न होने पर प्रेमी के हृदय में अपने प्रेमी के प्रति किसी प्रकार का संदेह नहीं रहता, वह पूर्ण विश्वासयुक्त हो जाता है। चौथा अभिमान, अपने प्रिय को ही सर्वाधिक श्रेष्ठ समझना अभिमान या मान कहलाता है। पांचवा द्रवी भाव, प्रेम में चित्त द्रवीभूत हो जाता है। इस गुण के उत्पन्न होने पर प्रिय के संबंध में आभास से ही मन में सत्वोद्रेक हो जाता है। प्रिय के दर्शन आदि में तृप्ति नहीं होती और प्रिय के अनिष्ट की चाहे वो कितना ही समर्थ क्यों न हो निरंतर शंका बनी रहती है। छठा अतिशय अभिलाषा, इस गुण के उत्पन्न होने पर प्रिय के प्रति इतना अनुराग बढ़ जाता है कि उसका एक पल का वियोग भी असह्य हो उठता है। संयोग में भी वियोग की कल्पना कसकती रहती है। नवनवत्व की भावना, इस गुण के उत्पन्न होने पर प्रेमी के मन में उसके सौंदर्य की आंतरिक और बाह्य दोनों की इतनी गहरी छाप बैठ जाती है कि वह प्रिय के विषय में नित्य नवीन भावनाओं में डूबा रहता है। आठवां उन्माद, इस गुण को प्राप्त करके प्रेमी का अनुराग अपने प्रेमी के लिए इतना अधिक हो जाता है कि संयोग के कल्प भी निमेश के समान बीत जाते हैं और वियोग के निमेश भी कल्प के समान प्रतीत होते हैं। इसी गुण से महाभाव दशा का आविर्भाव होता है। प्रेम के भेद, प्रेम के दो भेद होते हैं, अपार्थिव अथवा अलौकिक प्रेम, अपार्थिव अथवा लौकिक प्रेम। अलौकिक आलंबन के प्रति जो अनुराग होता है उसे अलौकिक प्रेम कहते हैं, यह प्रेम भक्ति के अधिक निकट है। लौकिक आलंबन के प्रति जो अनुराग होता है उसे लौकिक प्रेम कहते हैं। लौकिक प्रेम दो प्रकार का होता है, प्रकृत प्रेम यानी नेचुरल लव और सात्विक प्रेम यानी प्लेटोनिक लव। मानव का सहज अनुराग प्रकृत प्रेम कहलाता है। पार्थिव आलंबन के प्रति पार्थिव आश्रय की सहज वासनात्मक प्रणयाभिव्यक्तियाँ इसी प्रेम के अंतर्गत आती हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि नर नारी की सहज प्रीति ही प्रकृत प्रेम है। ऐसे प्रेम का आधार पार्थिव होता है, अतः शरीर सुख की उत्कट इच्छा से प्रेरित होकर जिस प्रेम का निवेदन किया जाता है वह स्वभावतः ही भावनात्मक होता है। रीतिकालीन काव्य में इसी प्रेम की व्यंजना हुई है। सात्विक प्रेम के सर्वप्रथम और प्रमुखतम व्याख्याता प्लेटो हैं। प्लेटो ने आत्मा की प्रीति का वर्णन किया है। इन्होंने पार्थिव आलंबन के प्रति अशरीरी आकांक्षा अथवा वासनामुक्त शुद्ध प्रीति या शुद्ध राग को ही सात्विक प्रेम की संज्ञा दी है। ऐसे प्रेम में वासना का परिष्कार एवं उन्नयन हो जाता है। छायावादी काव्य से पूर्व द्विवेदी युग का प्रेम इस निरूपण इसी कोटि का है। श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी इत्यादि कवियों को रचनाओं में अशरीरी आकर्षण का ही चित्रण मिलता है। रीति काव्य में घनानंद का प्रेम स्वरूप स्थान स्थान पर इसी कोटि को पहुंच गया है। यदि सूक्ष्मता से विचार किया जाए तो प्रकृति और सात्विक प्रेम के भेद नहीं वरन उनके सोपान प्रतीत होते हैं। उर्वशी में प्रेमाभिव्यंजना, प्रेमाभिव्यंजना, उर्वशी में स्पष्टतः लौकिक प्रेम का प्रतिपादन हुआ है क्योंकि आलंबन और आश्रय दोनों लौकिक हैं। इस प्रेम का प्रतिपादन सामान्य धरातल से हुआ है जिसमें किसी प्रकार की उदात्त भावना नहीं केवल वासना की गंध है। यही वह अवस्था होती है जब पुरुष अपने पौरुष को छोड़कर नारी के आगे घुटने टेक देता है। इसी रहस्य का उद्घाटन मदनिका इन शब्दों में करती है, इसमें क्या आश्चर्य, प्रीति जब प्रथम प्रथम जगती है दुर्लभ स्वप्न समान रम्य नारी नर को लगती है। नारी की यही रम्यता उसके जीवन की सबसे अधिक गौरव की घड़ी होती है। अपनी इसी रम्यता के बल पर अंग रूप की शक्ति से वह पुरुष पर विजय प्राप्त करती है और पुरुष उसके पदों पर पड़ा हुआ उसके मुख को देखता रहता है। जितनी गौरवमयी घड़ी वह भी नारी जीवन की, जब अजय केसरी भूल सुदबुद्ध समस्त तन मन की, पद पर रहता पड़ा देखता अनिमिष नारी मुख को, क्षण क्षण रोमाकुलित भोगता गूढ़ अनिर्वत सुख को। यही वह समय होता है जब नारी अपनी समस्त इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूर्ण कर लेती है अथवा कर सकती है। इस समय वह बड़े से बड़े तपोनिष्ठ का तप, ज्ञानी का ज्ञान, मानशील का मान और अभिमानी का अभिमान नष्ट करने में सफल होती है। तपोनिष्ठ नर का संचित तप और ज्ञान, ज्ञानी का मानशील का मान, गर्व गर्वीले अभिमानी का, सब चढ़ जाते भेंट सहज ही प्रमदा के चरणों पर, कुछ ही बचा नहीं पाता नारी से उद्वेलित नर। यह उस प्रेम का चित्रण है जो एकांत होता है, जिसमें केवल शारीरिक क्षुधा का स्पंदन होता है। यह प्रेम की प्रथम अवस्था है। यदि प्रेम इसी अवस्था पर आकर टिक जाता है तो निकृष्ट कोटि का होता है। दिनकर प्रेम की इस अवस्था को स्वीकार तो करते हैं किंतु इसे प्रेम के हेतु नहीं मानते। अपनी प्रेम विषयक मान्यताओं को इन्होंने स्पष्ट रूप से उर्वशी की भूमिका में इन शब्दों व्यक्त कर दिया है। नारी नर को छूकर तृप्त नहीं होती, न नर नारी के आलिंगन में संतोष मानता है। कोई शक्ति है जो नारी को नर तथा नर को नारी से अलग नहीं रहने देती और जब वे मिल जाते हैं तब भी उनके भीतर किसी ऐसी तृषा का संचार करती है जिसकी तृप्ति शरीर के धरातल पर अनुपलब्ध है। नारी के भीतर एक और नारी है जो अगोचर और इंद्रियातीत है। इस नारी का संधान पुरुष तब पाता है जब शरीर की धारा उछालते उछालते उस मन के समुद्र में फेंक देती है, जब दैहिक चेतना से परे वह प्रेम की दुर्गम समाधि में पहुंचकर निस्पंद हो जाता है। और पुरुष के भीतर भी एक और पुरुष है जो शरीर के धरातल पर नहीं रहता, जिससे मिलने की आकुलता में नारी अंग संज्ञा के पार पहुंचना चाहती है। परिरंभ पाश में बंधे हुए प्रेमी परस्पर एक दूसरे का अतिक्रमण करके किसी ऐसी लोक ऐसे लोक में पहुंचना चाहते हैं जो किरणोज्वल और वायवीय है। इंद्रियों के मार्ग से अतिंद्रिय धरातल का स्पर्श यही प्रेम की आध्यात्मिक महिमा है। उर्वशी की प्रेमा व्यंजना के स्वरूप को समझने के लिए कवि के उपयुक्त शब्द अत्यंत सहायक हैं, बल्कि कहना चाहिए कि यही शब्द उर्वशी की प्रेमाभिव्यंजना के स्वरूप का प्रतिपादन कर देते हैं। प्रेम की प्रेमावस्था में जिसका विवेचन अभी किया जा चुका है, प्रेम की सीमा शरीर सीमा तक ही होती है, किंतु वास्तविक प्रेम इस सीमा को तोड़कर बाहर निकलने में है। पुरुर्वा कहते हैं, दाह मात्र ही नहीं प्रेम होता है अमृत शिखा भी। नारी जब देखती पुरुष को इच्छा भरे नयन से नहीं जगाती है, केवल उद्वेलन अनल रुधिर में मन में किसी कांत कवि को भी जन्म दिया करती है। रुधिर की अनल ही बढ़ते बढ़ते वाय भी उदात्त बन जाती है। पहले प्रेम स्पर्श होता है, तदनंतर चिंतन भी। प्रणय प्रथम मिट्टी कठोर है, तब वायव्य गगन भी। अतिंद्रिय प्रेम ही मनुष्य को भावना के बल पर उस परम लोक तक पहुंचाने में समर्थ होता है जिसमें तार्किक अपनी बुद्धि से पहुंचने का प्रयास करते हैं। जिस मधुर भूमिका में जन को दर्शन तरंग पहुंचाती है, उस दिव्य लोक तक हमें प्रेम की नाव सहज ले जाती है, और तब नारी का अस्तित्व सीमित न रहकर असीमित हो जाता है। ओ शून्य पवन में मुझे देख चुंबन अर्पित करने वालों, संपूर्ण निशा में मेरी छवि का उनिद्र ध्यान धरने वालों, मैं देश काल से परे चिरंतन नारी हूँ। मैं आत्मतंत्र यौवन की नित्य नवीन प्रभा रूपसी अमर मैं चिर युवती सुकुमारी हूँ। तुम त्रिभुवन में अथवा त्रिकाल में जहाँ भी हो, अंतर में धैर्य धरो। सरिता समुद्र ग्रीवन मेरे व्यवधान नहीं, मैं भूत भविष्यत वर्तमान की कृत्रिम बाधा से विमुक्त, मैं विश्वप्रिया। उर्वशी में व्यंजित प्रेम के स्वरूप का विवेचन करने के पश्चात अब यह देखना आवश्यक प्रतीत होता है कि काव्याचार्यों ने प्रेम के जो 8 गुण बताए हैं, उर्वशी में उसका निर्वाह हुआ है अथवा नहीं। प्रेम के उल्लास आदि 8 गुण बताए हैं जिनका परिचय पहले दिया जा चुका है। यहाँ पर उन गुणों का नामोल्लेख करके उर्वशी से उनके उदाहरण देना ही पर्याप्त होगा। पहला उल्लास। स्वर्ग स्वर्ग मत कहो, स्वर्ग में सब सौभाग्य भरा है, पर इस महास्वर्ग में मेरे हित क्या आज धरा है। ममता। मिले अंत में तब जब ललना की मर्यादा गवाकर, स्वर्ग लोक की छोड़ भूमि पर स्वयं चली मैं आई। विश्रम्भ। इसीलिए असहाय तड़पता बैठा रहा महल में, लेकिन यह विश्वास प्रीत यदि मेरी मृषा नहीं है, मेरे मन का दाह व्योम के नीचे नहीं रुकेगा। जलद पुंज को भेद पहुंचकर पारिजात के वन में, वह अवश्य ही कर देगा संतप्त तुम्हारे मन को, और प्रीत जगने पर तुम वैकुंठ लोक को तजकर किसी रात निश्चित भूतल पर स्वयं चली आओगी। अहिमान। तुम अनंत सौंदर्य एक तन में बस जाने पर भी निखिल सृष्टि में फैल चतुर्दिक कैसे व्याप रहे हो। द्रविभाव। खड़ा सिहरता रहता मैं आनंद विकल उस तरुसा, जिसकी डालों पर प्रसन्न गिलहरियां खिलक रही हों, या पत्तों में छिपी हुई कोयल कूजन करती हो। अतिशय अभिलाषा। अनासक्ति तुम कहो, किंतु इस द्विधाग्रस्त मानव की झांकी तुम में देख मुझे जाने क्यों भय लगता है। नवनवत्व की भावना। नक्षत्रों के बीज प्राण के नभमे बोने वाली, ओ रसमयी वेदनाओं में मुझे डुबोने वाली। उन्माद। जब से हम तुम मिले न जाने क्या हो गया समय को, लय होता जा रहा मरुद्गत से अतीत गह्वर में, किंतु हाय जब तुम्हें देख मैं सुरपुर को लौटी थी, यही काल अजगर समान प्राणों पर बैठ गया था। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि उर्वशी में व्यक्त प्रेम शरीर के उस धरातल से प्रारंभ होता है जिसमें वासना का अहर्निश धधकता रहता है, किंतु इसकी यहीं पर इति नहीं होती। यह तन का अतिक्रमण करके अत्यंत व्यापक और उदात्त रूप ग्रहण कर लेता है। ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि कवि तन की सुंदरता के माध्यम से अदृश्य सत्ता तक पहुंचा करता है। कवि प्रेमी एक ही तत्व है तन की सुंदरता से, दोनों मुग्ध देह से दोनों बहुत दूर जाते हैं। उस अनंत में जो अमूर्त धागों को बांध रहा है सभी दृश्य सुषमाओं को अविगत अदृश्य सत्ता से। समाप्त।